ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए कहा है कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है और देश नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि किस तरह करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र संगम पर एकत्र हुए, जबकि उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। इसके बावजूद करोड़ों श्रद्धालु स्वेच्छा से महाकुंभ आए और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक प्रबंधन पेशेवरों और नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक रेलगाड़ियां संचालित की गईं।
सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन्स की प्लानिंग की थी 16,000 से ज्यादा ट्रेन्स चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रयागराज में दिव्य और डिजिटल महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ संपन्न हो गया। 45 दिन के इस विराट आध्यात्मिक आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को अपनाने और इसके उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बांधने वाला सूत्र बताया। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया। श्री सिंह ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में रक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की। पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान पर कविताओं के साथ साथ सरकार की नीतियों पर मंत्रालय के कर्मियों के लेख भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत के युवा दुनिया के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली युवाओं में से हैं और उनमें बड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है। श्री बिड़ला आज पुणे में भारतीय विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान 6,815 विद्यार्थियों को डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इनमें 42 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। दिल्ली विधानसभा की लोकलेखा समिति आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की आबकारी नीति पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट की जांच करेगी। रिपोर्ट में वर्ष 2021 में लागू की गई आबकारी नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व के नुकसान का पता चला है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने दोषियों के विरुद्ध जांच और कार्यवाही की मांग के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यह घोषणा की। श्री गुप्ता ने कहा कि समिति 3 महीने में रिपोर्ट देगी। अध्यक्ष ने विधानसभा सचिव को सीएजी रिपोर्ट दिल्ली आबकारी विभाग को भेजने और 1 महीने में कार्यवाही रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इस बीच भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को आज विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में भारत कॉलिंग सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत समेत सरकार की रणनीतिक पहले नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दे रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विशेष रूप से भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए नई गोल्ड कार्ड पहल शुरू की है। इससे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों के स्नातकों सहित विदेशी नागरिकों को $50,00,000 शुल्क के बदले अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलेगी। ट्रंप की योजना अमीर विदेशियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने के लिए है। रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच रद्द हो गया है। बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका। दोनों टीमों में अंक बांट दिए गए। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी हैं। इससे पहले मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इधर बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।